నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద పహలా అధ్యాయ సాత్. ఇస్ అధ్యాయ కా శీర్షక్ హై ద్రోణ పుత్ర కో దండ. శ్లోక క్రమాంక 44. సర్హస్యో ధనుర్వేద సవిసర్గోపసంయమః అస్త్రగ్రామశ్చ భవతా శిక్షితో యదనుగ్రహాత్. సర్హస్యో ధనుర్వేదః సవిసర్గోపసంయమః అస్త్రగ్రామశ్చ భవతా శిక్షితో యదనుగ్రహాత్. సర్హస్యో ధనుర్వేదః సవిసర్గోపసంయమః అస్త్రగ్రామశ్చ భవతా శిక్షితో యదనుగ్రహాత్. సరహస్య గోపనీయ, ధనుర్వేద ధనుష్ బాణ్ చలానే కి విద్య, సవిసర్గ ఛోడ్తే హువే ఉపసంయమ వశ్ మే కర్తే హువే అస్త్ర హతియార్ గ్రామః సభీ ప్రకార్ కే చ తథా భవతా అప్నే సే శిక్షితః విద్వాన్ యత్ జిస్కీ అనుగ్రహాత్ కృపా సే. అనువాద ఔర్ తాత్పర్య ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ ద్వారా. యహ ద్రోణాచార్య కి కృపా థీ కి ఆప్నే ధనుష్ బాణ్ చలానే కి విద్యా తథా అస్త్రో కో వశ్ మే కర్నే కే గుప్త జ్ఞాన్ కి కలా సీఖీ. తాత్పర్య, ధనుర్వేద యా సైన్య విజ్ఞాన్ కి శిక్షా ద్రోణాచార్య ద్వారా దీ జాతీ థీ, జిస్మే వైదిక మంత్రో ద్వారా అస్త్ర శస్త్రో కో చలానే తథా రోక్నే కే రహస్య సమ్మిలిత్ హోతే థే. స్థూల సైన్య విజ్ఞాన్ అస్త్రో పర్ ఆశ్రిత హై, లేకిన్ ఇస్ కలా సే భీ సూక్ష్మ కలా హై వైదిక మంత్రో సే సిక్త్ బాణో కో చలానే కి చలానా జో మశీన్ గనో యా పరమాణు బమో కే అపేక్షా అధిక ప్రభావశాలీ హోతే హై. యా నియంత్రణ వైదిక మంత్రో యా శబ్దో కే దివ్య విజ్ఞాపన్ ద్వారా కియా జాతా హై. రామాయణ మే కహా గయా హై कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाते थे. वे केवल ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे. अतएव यह आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है. अर्जुन को इसकी शिक्षा प्राप्त थी, अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन सारे लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे. द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उसका पुत्र ही उसका प्रतिनिधि था। यह अभिमत था उस वामा द्रौपदी का। यह तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। इसका उत्तर है कि ब्राह्मण को शिक्षक होना चाहिए, चाहे वह विद्या के किसी भी विभाग को क्यों न जानता या सिखाता हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्म उपदेशक तथा दान का पात्र होना चाहिए। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे पेशे या व्यवसाय ग्रहण करने के लिए अधिकृत हैं। इस अध्याय में श्रील व्यासदेव उन्होंने प्रारंभ किया है ये कहते हुए कि अब वो कृष्ण कथा सुनाने जाने वाले हैं। इसके पिछले अध्याय में यदि आपको याद होगा तो श्रीपाद नारद मुनि उन्होंने श्रील व्यासदेव जी को उपदेश दिया और ये समझाया कि जो वो अपूर्णता महसूस कर रहे थे अपने अंदर, उस अपूर्णता का कारण क्या था। और कारण यह था कि उन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना तो कर दी, परंतु केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही केवल उसमें सिखाया उन्होंने। जय श्री राधा गोपीनाथ जी की। और क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी भक्ति के विषय में कहीं पर भी निर्देश, आदेश, उल्लेख नहीं किया, वही एकमात्र कारण था व्यासदेव जी की अपूर्णता का। और व्यासदेव जी जब उन्होंने ये सब कुछ सुना तो अब वो प्रारंभ कर रहे हैं इस अध्याय में कि उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अब वो भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा उन्होंने प्रारंभ की है इस प्रसंग को लेकर। और ये कौन सा प्रसंग है, जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को दंडित किया गया था। जैसे यदि हम कहें कि हम कृष्ण लीला प्रारंभ करेंगे कल से, और पहला अध्याय कौन सा होगा कृष्ण लीला का, द्रोण पुत्र को दंड, तो कैसे लगेगा आपको कि कृष्ण लीला का प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐसे शीर्षक से, एक ऐसे अध्याय से जिसमें भगवान श्री कृष्ण का डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं दिखता। तो व्यासदेव जी ने ये प्रसंग क्यों लिया, इसका बहुत गुह्य कारण है। जैसे कि इस पूरे अध्याय में आपने सुना होगा अब तक कि अश्वत्थामा को दंड क्यों दिया जा रहा था। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब दुर्योधन, वो अब जख्मी अवस्था में रणभूमि में पड़ा हुआ था, तो दुर्योधन यह चाहता था उस समय भी कि किसी न किसी प्रकार से मेरे से जो संबंधित हो वही उस हस्तिनापुर का राजा बने। और अश्वत्थामा ने सोचा कि दुर्योधन को यदि मैं प्रसन्न करना चाहूंगा तो मैं पांडवों का यदि सर काट कर लेकर आऊं तो दुर्योधन अति प्रसन्न होगा। तो यह सोचते हुए अश्वत्थामा निकला और अश्वत्थामा बिना परखे बिना जाने ये सोचते हुए कि ये पांच जो सोए हुए हैं शिविर में ये पांडव हैं, तो रात्रि में उनकी सोए हुई अवस्था में उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और पांच सर लाकर दुर्योधन को देता है कि ये लो दुर्योधन, तुम भी क्या याद रखोगे मरते मरते कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब दुर्योधन इस अवस्था में था कि दुर्योधन वो देख भी नहीं पा रहा था, इतना घायल वो हो चुका था। तो दुर्योधन केवल अपने हाथों से उन पांच सर को स्पर्श करता है और अपने हथेली से वो सरों को दबाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसने दबाने की कोशिश की तो वो सर है पूर्ण प्रकार से दबकर पिचक गए। इतनी शक्ति थी दुर्योधन में उस अंत समय में भी उसके हथेलियों में कि केवल उसने अपने हथेली से उन सरों को थोड़ा दबाया और वो सर पिचक गए। तुरंत दुर्योधन अश्वत्थामा को कोसने लगता है कि अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया, क्योंकि दुर्योधन समझ गया कि ये पांडवों के सर नहीं हो सकते, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि पांडव जो हैं वो शारीरिक रूप से उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो दुर्योधन पांडवों के सर को कभी अपने हथेली से पिचक नहीं सकता था। तो दुर्योधन जान गया कि ये पांडव के सर नहीं किसी बालक के सर हैं और वो अश्वत्थामा को कोसने लगा कि तुम इस प्रकार का कार्य कैसे कर सकते हो, तुम एक ब्राह्मण हो। अश्वत्थामा एक ब्राह्मण था और दुर्योधन भी यही सोचने लगा कि ठीक है यदि पांडव मर गए होते परंतु पांडवों के पांच पुत्र तो थे जो वंश को आगे बढ़ाते थे, अब तो इसने वो भी खत्म कर दिया। तो दुर्योधन को भी मन ही मन इतना खराब लग रहा था। और तब जब अर्जुन को पता लगा तो अर्जुन ने प्रण लिया। द्रौपदी को जाकर अर्जुन कहते हैं कि आज मैं यदि उस अश्वत्थामा का सर नहीं लाता, उस अश्वत्थामा के सर पर तुम्हें खड़ी होकर अपने विलाप का स्नान करना होगा। तो अर्जुन जब निकले अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए, अब अश्वत्थामा समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है और मेरे पीछे अब और कोई नहीं बल्कि अर्जुन आ रहा है। तो देखिए एक ब्राह्मण जिसके अंदर ब्राह्मण के भी कोई ठीक गुण नहीं और जो अस्त्र शस्त्र की विद्या भी लिया था, सोच रहा था कि मैं क्षत्रिय गुण अर्जित करूंगा, तो वो भी गुण उसके अंदर नहीं मिले तो वो भागने लगा। जैसे हिंदी में एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो अश्वत्थामा की स्थिति उसी प्रकार की थी, न तो वो ठीक प्रकार से ब्राह्मणों के जो नियम है उसका पालन कर पाया, और न ही वो पूर्ण प्रकार से जो क्षत्रिय का नियम होता है वो पालन कर पा रहा था। भागने लगा, डर के मारे भागने लगा। और जब उसे समझ में आया, इतना वो डर के मारे भाग रहा था कि उसके घोड़े थक कर रुक गए, उसके रथ के घोड़े वो थक गए और वो रुक गए। तो अब अश्वत्थामा को लगा, अब मेरे घोड़े रुक गए, अब मैं और कहां खुद भागूंगा अर्जुन से बचकर। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अर्जुन ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब देखिए, सबसे पहले गलतियों पे गलती किया जा रहा है अश्वत्थामा। ये नहीं कि जाकर अर्जुन से क्षमा मांग ले, पूर्ण यहां पर निश्चित है कि वो बच नहीं पाएगा, परंतु ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा है। और वो ब्रह्मास्त्र जो कि अस्त्रों में सर्वोच्च अस्त्र है, वो अस्त्र छोड़ रहा है अर्जुन के ऊपर, यह जानते हुए कि उसे पता नहीं कि ये फिर से इसे कैसे लिया जाए, इस ब्रह्मास्त्र को एक बार छोड़ने के पश्चात। क्योंकि जो धनुर्विद्या में निपुण होते हैं वो जब कोई अस्त्र छोड़ते हैं तो यदि उनकी इच्छा नहीं हुई तो वो अस्त्र को फिर से वापस अपने तुणीर में भी ला सकते हैं। तो अश्वत्थामा इस अपूर्ण ज्ञान को लेते हुए प्रहार कर रहा है अर्जुन के ऊपर। तो ब्रह्मास्त्र तो छोड़ दिया, अब पता लगा कि भाई ये ब्रह्मास्त्र मैंने छोड़ दिया है, बहुत बड़ी गलती कर दी इसको छोड़कर। जैसे कोई व्यक्ति यदि एक मच्छर को मारने के लिए एक तोप चलाए कि एक मच्छर को मारना है तो लाओ तोप लाओ, तो यहां पर अब कोई युद्ध नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, परंतु अब अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं सब कुछ शांत होने के पश्चात। हालांकि अर्जुन तो खैर सबसे बड़े योद्धा थे, परंतु फिर भी अर्जुन के सामने यह ब्रह्मास्त्र एक मच्छर के समान था। तो फिर अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और पूछते हैं कि अब ये देखिए, इसे कहते हैं भक्त, कि ये नहीं कि अश्वत्थामा ने इतनी गलती की है तो अब भगवान को पूछने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो वही कहेंगे जो मैं सोच रहा हूं अब, और सभी सोच रहे हैं कि इसको तुरंत खत्म करो। परंतु हर समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के निर्देश का पालन करते थे। तो जब अश्वत्थामा ने, अब अर्जुन जो सर्वोच्च योद्धा हैं और अब पूरा युद्ध जीता है उन्होंने, तो कोई व्यक्ति जो कि भगवान के इतने निकट है और जिसने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता है, वो व्यक्ति हो सकता है घमंड के कारण कि मेरे वजह से युद्ध पांडवों ने जीता है तो ये तो केवल एक सारथी थे। हां, थोड़ा एक भगवद गीता का क्लास दिया था पहले, परंतु युद्ध में तो मैंने सब कुछ सबको परास्त कर जिताया, तो किसी के अंदर ये घमंड हो सकता है। और ज्यादातर जब कोई व्यक्ति फर्स्ट आता है तो ये जो घमंड का ज्वर है इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है ज्यादा। परंतु अर्जुन देखिए उनकी नम्रता, कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताइए अब मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण अब आदेश देते हैं कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और अपने ब्रह्मास्त्र से उसका ब्रह्मास्त्र फिर से लो। भगवान ने भी नहीं कहा कि उसे तुरंत मार दो अपने ब्रह्मास्त्र से, अपने ब्रह्मास्त्र से उसका ब्रह्मास्त्र को फिर से लो। तो अर्जुन वो करते हैं, और जब अब अश्वत्थामा के पास जो अंतिम अस्त्र था वह भी अब जाता रहा, तो तुरंत अर्जुन ने अश्वत्थामा को जैसे एक पशु को बंदी बनाया जाता है, एक शिकारी अपने पाश में जब एक पशु को बंदी बनाता है, उस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया। और व्यासदेव जी वो इन श्लोकों में कहते हैं कि वो अश्वत्थामा जो ब्रह्म बंधु था, अब देखिए ये जो शब्द है ब्रह्म बंधु, मुझे याद है कि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि ब्रह्म बंधु किसी का गुणगान किया जा रहा है या किसी व्यक्ति को व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा जा रहा है कि तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो। तो मुझे याद है जब मैं पहले पहले शुरुआत में आया था भक्ति में, तो कहीं पर सुना था ये ब्रह्म बंधु कर कोई प्रवचन में, तो ध्यान से नहीं सुना था। तो किसी भक्त की दीक्षा हुई थी, ब्राह्मण दीक्षा, तो हम जाकर उनको कहे कि आप ब्रह्म बंधु हो गए, तो बेचारे नम्र भक्त थे, उन्होंने कहा आपने सही पहचान लिया मुझे। तो मुझे लगा कि ये अपने आप को गुणगान क्यों करें, ज्यादातर हम जब भक्तों का गुणगान करते तो वो कहते अरे नहीं नहीं आप जानते नहीं मैं कितना अधम हूं ये हूं, तो वो कहे हाँ आपने ठीक पहचाना मुझे। तो फिर एक भक्त ने मुझे साइड में लिया और कहा कि आप जानते हैं क्या कह रहे हैं आप, तो मुझे समझ में आया कि ब्रह्म बंधु, जब मैं आज भी पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया कि ब्रह्म बंधु व्यंग्यात्मक दृष्टि से एक ब्राह्मण को कहा जाता है जो ब्राह्मण ब्राह्मण के स्तर पर नहीं होता। तो अश्वत्थामा हालांकि एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और ऐसे ब्राह्मण द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मण, कि द्रोणाचार्य जिनको मारने के लिए दृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, दृष्टद्युम्न की उत्पत्ति द्रुपद ने की थी यज्ञ के द्वारा, ताकि दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करे, और वही दृष्टद्युम्न जाता है द्रोणाचार्य के पास आशीर्वाद लेने के लिए कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए पैदा हुआ हूं वो कार्य में मैं सफल हूं। और द्रोणाचार्य जानते हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो ऐसे ब्राह्मण थे द्रोणाचार्य, परंतु देखिए उनके पुत्र किस प्रकार से उन्होंने इस ब्राह्मण जाति को पूर्ण प्रकार से एक कलंक लगा दिया। वेदों में एक बहुत सुंदर घटना है एक बालक की, जिसका नाम था, आगे चलकर उसका नाम पड़ा सत्यकाम। ये बालक गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है ज्ञान अर्जित करने के लिए, और गौतम ऋषि के गुरुकुल में नियम था कि केवल ब्राह्मणों को एंट्री थी और किसी को नहीं। तो जैसे ही सत्यकाम गौतम ऋषि के समक्ष जाता है, तो गौतम ऋषि पूछते हैं कि सबसे पहले अपना परिचय दो, तुम ब्राह्मण हो कौन हो। तो सत्यकाम कहता है कि भाई मुझे तो अपना परिचय पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो गौतम ऋषि कहते हैं नियम पता नहीं इस गुरुकुल का, केवल जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को यहां पर अनुमति है प्रवेश की। तो जाकर अपनी माता से पूछो कि तुम कौन से कुल में जन्मे हो। तो सत्यकाम अपनी मां के पास जाता है और मां से पूछता है कि बताओ गौतम ऋषि पूछ रहे हैं मैं कौन से कुल में जन्मा हूं। अब उनकी माता वो थी एक वैश्या, तो वो कहती हैं कि मैं एक वैश्या हूं और मुझे पता नहीं तुम्हारा कुल कौन सा है, तो जाकर गौतम ऋषि से ये सत्य कह दो कि तुम्हारी मां एक वैश्या है और जानती नहीं कि तुम कौन से कुल में पैदा हुए हो। तो सत्यकाम गौतम ऋषि के पास जाते हैं और गौतम ऋषि को कहते हैं कि मेरी माता ने यह कहा है कि वो एक वैश्या है, इसलिए वो ठीक बता नहीं सकती कि मैं कौन से कुल में जन्मा हूं। तो गौतम ऋषि कहते हैं तो मैं बताता हूं कौन से कुल में तुम जन्मे हो। तो सभी शिष्य गौतम ऋषि के आ जाते हैं निकट सुनने के लिए कि गौतम ऋषि ने कैसे जान लिया। तो गौतम ऋषि कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो और तुम्हारा सबसे पहले अधिकार है इस गुरुकुल में आने का। और सभी शिष्य जो हैं वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित भौचक्का रह जाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये साफ साफ कह रहा है कि ये वैश्या का पुत्र है और इसे पता भी नहीं कि इसके पिता कौन है, और आप कहते हैं कि इसका सबसे पहले अधिकार है इस ब्राह्मण इस गुरुकुल में। तब फिर गौतम ऋषि कहते हैं कि सबसे पहला जो गुण है ब्राह्मण का वो है सत्यवान रहता है वो, और इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति इतना सत्यशील है कि बिना किसी कपट के, बिना किसी दुर्भावना के ये आकर सत्य कह रहा है कि व्यक्ति कौन है, तो ये ब्राह्मण ही होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा सत्यकाम आगे चलकर। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं कि अश्वत्थामा हालांकि वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था परंतु उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं थे। और ये जो प्रसंग व्यासदेव जी सुना रहे हैं, यहां पर ये जो श्लोक हमने लिया, ये श्लोक द्रौपदी कह रही है अर्जुन से कि अब बंदी बनाकर लाया है अश्वत्थामा को और सामने द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया है। अब देखिए इस भौतिक संसार में जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ बुरा करता है, हमारा कुछ बुरा करता है या बुरा व्यवहार करता है, तो उस व्यक्ति के प्रति कितनी दुर्भावना रहती है हमारे अंदर। कई बार तो यदि कुछ व्यक्ति करे भी नहीं तब भी तुम जिस प्रकार से बोलते हो कुछ ठीक नहीं लगता, तुम जिस प्रकार से चलते हो, खाते हो, जो तुम हो, जैसे तुम हो, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। यहां पर देखिए व्यासदेव जी उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्ण कथा समझनी है तो सबसे पहले उनके भक्तों का चरित्र समझना होगा, इसलिए उनके भक्तों का चरित्र यहां पर दर्शाया गया है। द्रौपदी के पांच पुत्रों को इस प्रकार से नृशंस तरीके से इस अश्वत्थामा ने मारा, और द्रौपदी यहां पर क्या कह रही है, वो किसके विषय में सोच रही है, देखिए वो सोच रही है अश्वत्थामा की मां के विषय में, कृपी, कृपाचार्य की जो बहन थी, कि जिस प्रकार से मैं अब इस पीड़ा में हूं उसी प्रकार की पीड़ा मैं कृपी को नहीं पहुंचाना चाहती। अब इसमें यदि हम देखें तो द्रौपदी के जो पांच पुत्र थे उन्होंने अब तक अपना जीवन शुरू भी नहीं किया था जीना, और यहां पर अश्वत्थामा, इसने तो अपना बहुत सा जीवन जी चुका था ये, और इस अश्वत्थामा की कोई आवश्यकता भी नहीं थी किसी को। ऐसा नहीं कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि लोगों को इसकी आवश्यकता हो हस्तिनापुर में या किसी और राज्य में, कोई आवश्यकता नहीं थी। हारी हुई सेना का एक सैनिक था वो, और यहां पर जीती हुई सेना पांडवों के डायरेक्ट पुत्र, ये पांच कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति ये थे। परंतु द्रौपदी सोच रही है मां के विषय में, अश्वत्थामा के मां के विषय में, कि वो उसके अंदर क्या बीतेगी। अब यदि जाकर कृपी को पूछा भी जाता कि तुम्हारे अनुसार तुम्हारे पुत्र के विषय में क्या करना चाहिए, तो हो सकता था कृपी भी ये कह देती मार दो इसको, हो सकता था कि कृपी भी यही कहती कि इसको खत्म कर दो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक मॉर्निंग वॉक में वृंदावन में थे, और वहां पर ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी ये जो पाश्चात्य देश में और भारत में भी जो गर्भ हत्या एबॉर्शन के विषय में बहुत स्ट्रांगली वो सबको बोल रहे थे कि ये कितना नृशंस पाप है कि एक शिशु की हत्या गर्भ में की जाए केवल किसी व्यक्ति के इंद्रिय भोग के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे थे अबॉर्शन के विषय में, गर्भ हत्या के विषय में, और उस वार्तालाप में, उस कॉन्वर्सेशन में एक ढोंगी साधु जो अपने आप को भगवान मानता था उसके विषय में चर्चा शुरू हुई कि ये व्यक्ति अब अपने आप को भगवान कह रहा है। और फिर एक भक्त ने प्रभुपाद जी को ये सूचना दी कि ये ढोंगी साधु जो अपने आप को भगवान कह रहा है इसकी मां ने इसको निष्कासित कर दिया है अपने परिवार से क्योंकि अपने आप को भगवान कह रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे गर्भ में ही मार देना चाहिए था, और सभी भौचक्का हो गए। अभी प्रभुपाद जी कुछ समय पहले गर्भ हत्या के विषय में इतना कुछ कह रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा उस व्यक्ति को मां ने बहुत देर बाद निष्कासित किया, पहले ही कर देना चाहिए था उसे जो अपने आप को भगवान कह रहा है। तो देखिए यहां पर यदि कृपी को भी जाकर पूछ लिया जाता, अर्जुन द्रौपदी कृष्ण जाकर, ठीक है अर्जुन और कृष्ण ये कहते कि तुम कृपी के विषय में इतना भावना व्यक्त करे, चलो जाकर उनसे पूछते हैं कि ये अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्र ने ये सब कार्य किया है तो कहो कि क्या करना चाहिए। तो कृपी भी कह देती कि इसे मार डालो। जैसे प्रभुपाद जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक चोर जिसे बहुत वर्षों पश्चात पुलिस ने पकड़ा, और जब उसे अब दंडित किया जाने वाला था वो व्यक्ति, तो उसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे मेरी मां से मिलना है। मां को बुलाया गया, तो जैसे ही मां आई तो उस व्यक्ति ने मां को कहा थोड़ा निकट आओ, तो मां थोड़ा निकट आई और इस व्यक्ति ने अपने दांतों से उसके कान काट दिए। तो चिल्लाई जोर से और सब पूछने, ये क्या कर रहा हो तुम? तो व्यक्ति कहता मैं दंडित कर रहा हूं इसे, क्योंकि बचपन में मैंने चोरी शुरू की थी और इसने कभी मुझे मना नहीं किया। यदि उस समय मुझे अच्छी शिक्षा ये दी होती तो आज मैं इस अवस्था में नहीं रहता। तो देखिए संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। तो यहां पर द्रौपदी और अर्जुन के संस्कार देखिए। अर्जुन जब अश्वत्थामा को इस प्रकार से बंदी बना लिया थे तो अर्जुन भी मन में बहुत विलाप कर रहे थे कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, यह अश्वत्थामा मेरे गुरु का पुत्र है द्रोणाचार्य, उनको कैसा लगेगा। तो अर्जुन द्रोणाचार्य के विषय में सोच रहे हैं और द्रौपदी कृपी के विषय में सोच रही है। और यहां पर इन दोनों के मध्य में कृष्ण कहते हैं मारो। हालांकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण परीक्षा कर रहे थे। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, जैसे कई बार हमारे मंदिर में जब कोई चप्पल चोर को पकड़ा जाता है तो कई भक्त हैं जो बहुत दिनों से अपना हाथ साफ नहीं किए किसी के ऊपर, तो प्रतीक्षा करते हैं यदि मंदिर के जो अधिकारी हैं वो बस एक सिग्नल दे दें कि इसे थोड़ा अपना संग दो दूसरे प्रकार का, तो तुरंत फिर उस व्यक्ति के ऊपर। कई बार तो ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर कभी आपने संभावना नहीं की होगी कि वो इस प्रकार का अपना संग देंगे उस चोर को, परंतु देखते हैं भेती गंगा में हाथ धोलाना चाहिए, पता नहीं फिर से कोई चप्पल चोर मिलेगा कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि अब अर्जुन और द्रौपदी ने सुना भैया कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उनका कथन है कि इसे तुरंत खत्म करो तो बस अब तो सरकार मान्य। परंतु अर्जुन और द्रौपदी यहां पर वो देखिए भगवान परीक्षा कर रहे थे दोनों की, और अर्जुन और द्रौपदी दोनों, और ऐसा नहीं कि एक दूसरे को देखकर, अश्वत्थामा को लाने से पहले अर्जुन ये उनकी विचारधारा थी। ऐसा नहीं कि द्रौपदी को देखा तो फिर अर्जुन भी पिघल गए, अलग अलग वो व्यक्तिगत रूप से अलग अलग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। यहां पर द्रौपदी को यह पता नहीं कि अर्जुन ये सोचते हुए लाए हैं, और अर्जुन को यह पता नहीं कि द्रौपदी भी यही कहने वाली है। हॉरोस्कोप मिल रहा था उनका। तो यहां पर ये जो गुण है एक वैष्णव का, कि वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी रहते हैं। ये सारे जो बातें हैं संसार में पर दुख दुखी, कि दूसरे को दुख को देखकर दुखी होना। आजकल तो लोग दूसरे के सुख को देखकर दुखी रहते हैं कि वो व्यक्ति इतना सुखी कैसे है, ईर्ष्या करते हैं कई बार कि उसके पास इतना है तो मेरे पास इससे दुगना तिगना चौगुना होना चाहिए। तो यहां पर एक जो वैष्णव के गुण हैं वो दर्शाए गए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जानने से पहले हमें भगवान के जो भक्त हैं उनका चरित्र जानना होगा। जैसे श्री रामानुज संप्रदाय में एक बहुत ही महान भक्त हुए श्री रंगनाथ जी के, जिनका नाम था पराशर भट्ट। और एक बहुत सुंदर घटना याद आती है इनके जीवन की, कि पराशर भट्ट वो इतने नम्र भक्त थे भगवान श्री रंगनाथ जी के, और उनकी नम्रता के वजह से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसा नहीं कि उनको प्रसिद्धि चाहिए थी, कई बार लोग नम्रता दर्शाते हैं प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, परंतु पराशर भट्ट इतने नम्र थे और वो कोई प्रसिद्धि नहीं चाहते थे, परंतु बहुत वो वैष्णव समुदाय में प्रसिद्ध हो गए थे। इतना प्रसिद्ध हो गए थे कि दूर दूर से लोग आते आशीर्वाद लेने के लिए पराशर भट्ट से, और पराशर भट्ट छिपकर अपने आप को अकेले ही रखते, कभी वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखाते कि मैं हूं जो आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। परंतु एक व्यक्ति वो बहुत ईर्ष्या करने लगा पराशर भट्ट से। वो भी एक प्रकार का वैष्णव ही था, परंतु ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या उसके अंदर इतनी हुई कि ये व्यक्ति को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। तो पराशर भट्ट वो रोज रंगनाथ जी के सामने जाया करते थे और हाथ जोड़कर वो प्रार्थना किया करते थे रंगनाथ जी के सामने, अहम पापीयाम, अहम अधम, इस प्रकार से वो कहते थे कि मैं, मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं, मुझसे बड़ा अधम और कोई नहीं। और सभी भक्त जब वो सुनते थे कि पराशर भट्ट इस प्रकार के वचन कह रहे हैं, तो हम क्या जाकर कहें फिर भगवान के सामने। तो ये जो व्यक्ति जो ईर्ष्या करता था पराशर भट्ट से, जब भी पराशर भट्ट रोज जाकर इस प्रकार से प्रार्थना करते थे, अपनी व्यथा भगवान के सामने सुनाते थे, अहम पापीयाम, तो ये व्यक्ति पीछे से कहता था सत्यम, कि ये जो कह रहा है अहम पापीयाम ये सत्य है। और सभी भक्त दूसरे जब उन्होंने ये सब वो सुना, तो इतना उनको क्रोध आता था इस व्यक्ति के ऊपर। एक तो यहां पर पराशर भट्ट जैसा नम्र वैष्णव वो भगवान के सामने नम्रता से ये सारे वाक्य कह रहा है, जो कि कोई सत्य नहीं है इसके अंदर, ये सब अपनी नम्रता के कारण वो कह रहे हैं। सत्य का अर्थ ये नहीं कि वो असत्य कह रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि पराशर भट्ट जो इतने नम्र हैं, उनके अंदर पाप तो लेश मात्र भी हो नहीं सकता, और ये व्यक्ति उल्टा कह रहा है सत्यम। तो रोज पराशर भट्ट इस प्रकार से कहते और ये पीछे से चिल्लाता सत्यम, ये कहते अहम पापीयाम सत्यम, अहम अधम सत्यम, अहम दुराचारी सत्यम। तो एक दिन पराशर भट्ट जब ये सत्यम सत्यम कह रहा था, तो पराशर भट्ट पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर दंडवत किया इस व्यक्ति को, और दंडवत करने के पश्चात फिर भगवान के सामने वापस आए पराशर भट्ट। और भगवान के सामने आकर अब वो कहते हैं कि हे रंगनाथ, मैं रोज आकर अपने विषय में कह रहा हूं आपको कि मैं पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं अधम हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा, तो आज मैं साक्षी लाया हूं। ये साक्षी है जो यहां पर मेरे लिए ये कह रहा है कि ये सत्य कह रहा है। तो यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो इसको, इसके वाक्यों पर विश्वास करो जो साक्षी आज मैं लाया हूं। तो ये व्यक्ति ये तुरंत गिर गया पराशर भट्ट के चरणों में, और वो कोटि कोटि क्षमा मांगने लगा उनसे। इसे कहते हैं वैष्णव। तो यहां पर हमें इनके चरित्र से यह सिखाया जा रहा है कि एक दुराचारी तो खैर दूर की बात है, परंतु जब हम वैष्णव के साथ संग में व्यवहार करते हैं, तो कितना हमें सावधान होना चाहिए। अब सोचिए, अगर द्रौपदी और अर्जुन, इनका चरित्र इतना महान है कि अश्वत्थामा जैसे एक कातिल व्यक्ति के प्रति इतना भाव है इनके अंदर, कृपा का भाव है, तो सोचिए द्रौपदी और अर्जुन जैसे व्यक्ति वो किसी भक्त के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। तो जो वैष्णव अपराध है, उसके अनुसार या उसकी तुलना में और कोई ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान के हृदय को ठेस पहुंचाए। इसलिए हम यदि भागवत में पढ़ें तो भागवत में ऐसे प्रसंगों का वर्णन है जहां पर बड़े बड़े पापियों के विषय में कहा गया है, जैसे अजामिल। इतना बड़ा पापी अजामिल था कि उसने अपने अधिकांश जीवन में सब प्रकार के पाप किए, मन से, बुद्धि से, अपने वचनों से और अपने कार्यों से, सब प्रकार के पाप अजामिल ने किए। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो अपनी टीका में अजामिल प्रसंग के अंत में वो कहते हैं कि अजामिल की फिर भी रक्षा हुई। इतना बड़ा पापी अजामिल था, फिर भी अजामिल की रक्षा हुई, क्योंकि अजामिल ने कभी अपराध नहीं किया था। अब ये जो शब्द है अपराध, ये अपराध जो शब्द है केवल जब वैष्णव के प्रति होता है उसे ही अपराध कहा जाता है। बाहर जब व्यक्ति पाप करता है, इंद्रिय भोग करता है, जब वो अज्ञान में रहता है, उसे अपराध नहीं कहा जाता। जैसे हम जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो उसे कहते हैं आराधना, हमारी आराधना हम अर्पित कर रहे हैं भगवान को, और उस आराधना में कोई अपव्यय होना उसे कहते हैं अपराध। कोई अवरोधन हमारी आराधना में आना उसे कहते हैं अपराध। और हमारी साधना में अवरोधन आता है जब हम वैष्णव के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। तो अजामिल वो एक शुद्ध पापी था, उसने अजामिल ने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था। जगाए मधाई, ये दोनों जगाए मधाई भी शुद्ध पापी थे, अनअलॉयड सिनर्स। उन्होंने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया था, और जब उनमें से एक ने किया तो सुदर्शन चक्र निकाल लिया चैतन्य महाप्रभु ने, परंतु उनमें से दूसरे ने नित्यानंद प्रभु की रक्षा की, जगाई को रोककर, मधाई को रोककर, मधाई को रोककर। तो मधाई को रोका जगाई ने कि अरे ये कोई संत लगता है, इसे मत मारो। तो चैतन्य महाप्रभु अपना सर्वस्व अर्पित करना चाहते थे जगाई के ऊपर, जिसने कि तुमने रक्षा की। और चैतन्य महाप्रभु इस लीला में, चैतन्य महाप्रभु उनका शरीर जो है पूरा काला हो गया। इस लीला के अंत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब जगाए मधाई का उद्धार किया उन्होंने, तो चैतन्य महाप्रभु जो कि गौरांग हैं, गौर वर्ण के, चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल काले हो गए। और सभी चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए ये कह रहे थे कि बिल्कुल श्याम सुंदर कृष्ण की तरह आप लग रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो सारा पाप मैंने इनका ले लिया मेरे अंदर, जगाए मधाई को शुद्ध कर उनके अंदर का जो पाप मैंने अब मेरे अंदर लिया है, और जो मैं काले वर्ण का हो गया हूं, ये सारा जो पाप है उस व्यक्ति के अंदर जाएगा जो आगे चलकर मेरे वैष्णव का अपराध करेगा। तो जैसे भागवत का श्लोक है कि जब कोई भगवान की भक्ति में लगता है तो उसे क्या कहा गया है, सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, कि वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगता है उसके अंदर सुरा, सभी जो सुरगण हैं, देवता हैं, उनके सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। समासते सुरा। अब ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि वही व्यक्ति जब भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करता है तो ये श्लोक को हम कैसे गाएंगे फिर? समा सते असुरा, कि जितने भी असुर के गुण हैं फिर उस व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। वही व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करने के वजह से उसके अंदर सारे सुरगण के गुण आते हैं, वही व्यक्ति के अंदर सारे असुरों के गुण भी आ सकते हैं जब वो वैष्णव का अपराध करेगा तब। इसीलिए जो पाप है इस संसार में उसे धूलि लेप कहा गया है। जैसे मान लो इस टेबल पे धूलि जमा हो जाए तो उसे कहेंगे धूलि लेप। तो पाप को धूलि लेप कहा गया है और अपराध को कहा गया है वज्रलेप। वज्रलेप क्या होता है कि जब कोई पत्थर के ऊपर वज्रपात होता है, बिजली वज्रपात जब एक पत्थर के ऊपर होती है या बिजली कड़कती है पत्थर के ऊपर, तो जो लकीर बनती है उस वज्र के वजह से पत्थर के ऊपर, तो उसे आप ऐसे झाड़ पहुंच नहीं सकते। जैसे धूलि को एक कपड़े से आप साफ कर सकते हो, धूलि लेप को, परंतु वज्र लेप को कपड़े से साफ नहीं कर सकते। तो जो अपराध है वैष्णव के प्रति वो वज्र लेप के समान है, और जो इस संसार का पाप है वो केवल धूलि लेप के समान है। एक महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल एक भगवान के नाम के अक्षर से वो सारी जो धूलि है, इतने जन्म जन्मांतर तक इतनी धूलि का लेप हुआ है हमारी आत्मा के ऊपर, वो सब कुछ साफ हो सकता है। परंतु एक वैष्णव अपराध वो वज्रपात या वज्र लेप के समान है। इसलिए आप देखिए भागवत में अजामिल का प्रसंग है, छठे स्कंद में शुरुआत है अजामिल के प्रसंग से, और उसी छठे स्कंद में अजामिल के पश्चात दक्ष प्रजापति के विषय में कहा गया है कि दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से नारद मुनि के प्रति अपराध किया, और वही दक्ष प्रजापति ने चौथे स्कंद में वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में जो सर्वोच्च वैष्णव है शंभु भगवान शिवजी, उनके प्रति अपराध किया, और दक्ष को बकरी का सर मिला उसके कारण। अब देखिए अंततः हालांकि दक्ष प्रजापति ने कोई पाप नहीं किया था अपने जीवन में, जैसे यदि दक्ष की तुलना अजामिल से की जाए तो अजामिल ने अपने सारे जीवन में कितने पाप किए, जुआ चोरी मक्कारी मारकाट सब प्रकार के पाप अजामिल ने किए, और दक्ष प्रजापति का जीवन यदि देखो, प्रजापति एक देवता के समान इतने प्रभावशाली वो व्यक्ति, परंतु इस्कॉन में भी आप देखो कि आप अजामिल दास सुनेंगे, भक्तों का नाम भी है अजामिल दास, परंतु दक्ष दास नहीं है किसी का। अंततः सारे प्रसंगों में अजामिल का गुणगान किया गया है, परंतु दक्ष के विषय में कहा गया है कि बकरी का सर मिला, या नारद मुनि का अपराध किया उसके वजह से दंडित हुआ दक्ष प्रजापति, परंतु अजामिल और इन जैसे जो पापी हैं अंततः, क्योंकि इन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। अब देखिए इतना सूक्ष्म है ये भक्तों के प्रति अपराध कि उसी छठे स्कंद में हमारे मंदिर में ये प्रसंग चल रहा था कि इंद्र ने अपने गुरु महाराज बृहस्पति के प्रति अपराध किया, और देखिए वो अपराध कैसा था। इंद्र अपनी इंद्रपुरी में, हालांकि इंद्रपुरी कोई साधारण पुरी नहीं है और इंद्र कोई साधारण नहीं है, इंद्र जो है वो राजा है वहां का, तो इंद्र अपने ही राज्य में बैठे और इंद्र की पूजा हो रही थी। सारे अन्य जो देवता गण इंद्र के अधीन हैं, वो सब आकर इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गा रहे थे और इंद्र की पूजा चल रही थी। तो बड़े आसन पर इंद्र बैठे हुए थे और इंद्र की पूजा चल रही थी। और उसी समय बृहस्पति उनके गुरु वो प्रवेश करते हैं। तो इंद्र ने देखा बृहस्पति ने प्रवेश किया, तो नियम के अनुसार इंद्र को दंडवत करना चाहिए था बृहस्पति को कि उनके गुरु आए हैं तो ये सब छोड़ो, अब पूजा उनकी होनी चाहिए, ये मेरे गुरु हैं। परंतु अब जो ज्वर वहां पर बढ़ रहा था कि मेरी पूजा चल रही है तो मैं यहां पर मध्य में हूं, मेरे ऊपर स्पॉटलाइट है, तो बृहस्पति ऑडियंस में ही होने चाहिए। तो इंद्र ने बिल्कुल केवल एक मिनट के लिए उन्होंने अपना ध्यान बृहस्पति से अलग किया, केवल एक मिनट। और वो एक मिनट में उसका परिणाम क्या हुआ कि बृहस्पति वहां से चले गए रुष्ट होकर। हालांकि बृहस्पति ये नहीं चाहते थे कि सब मेरा गुणगान करे, परंतु बृहस्पति वो सोच रहे थे कि इंद्र इतना घमंड में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि वो इतना बड़ा व्यक्ति है और इंद्र वास्तविक रूप में बड़े व्यक्ति हैं और राजा होने के कारण ये सब तो एक राजा के प्रति किया जाता है, पूजा और गुणगान ये सब राजा का होता है। परंतु एक मिनट के लिए निग्लेक्ट किया बृहस्पति को और उसके कारण जो पूरा देवता का समुदाय था वो हार गया दानवों के साथ। और ब्रह्मा जी के पास जब देवता जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि उस इंद्र ने वो एक क्षण के लिए उसने बृहस्पति जब प्रवेश किए तो बृहस्पति की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया, तो वो केवल एक क्षण का जो निग्लेक्ट था उसके वजह से ये सब कुछ अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है कि पूरा जो देवता समुदाय था उसको हरा दिया दानवों ने, राक्षसों ने। तो इसीलिए वैष्णव के साथ हम जब संग करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यदि हम उनके साथ व्यवहार इस प्रकार से करें। अब देखिए भागवत में तो इस प्रकार के प्रसंग हैं कि कोई व्यक्ति वैष्णव नहीं था परंतु आगे चलकर वैष्णव बन गया और उसके प्रति जो अपराध पहले किया गया था जब वो वैष्णव नहीं था वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज तो एक 5 वर्षीय क्षत्रिय बालक, उस समय तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं था भगवान की भक्ति, विष्णु की भक्ति, और उस समय सुरुचि ने अपराध किया था जब वो वैष्णव नहीं थे पूर्ण प्रकार से। परंतु आगे चलकर जब ध्रुव महाराज वैष्णव बन गए तो वो अपराध अकाउंट में आ गया सुरुचि के और सुरुचि को उसका दंड भुगतना पड़ा। तो सोचिए वैष्णव अपराध कितना सूक्ष्म है कि कोई व्यक्ति के प्रति जब कोई वैष्णव बन चुका है तो कितना हमें सावधानी से उस व्यक्ति के साथ, उस भक्त के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए यदि हम अपने आप को पूर्ण प्रकार से सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं भक्ति के पथ में तो वैष्णवों को इस प्रकार से सादर सत्कार करना चाहिए जैसे हम भगवान का करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में वो अपना प्रसाद ले रहे थे तो कुछ कुत्ते वहां पर आकर घूम रहे थे, थोड़ा परेशान कर रहे थे, तो तुरंत प्रभुपाद जी के शिष्य आकर उन्हें फटकार कर बाहर भगाने लगे। प्रभुपाद जी कहा ना प्रसाद दो उनको। तुम्हें पता नहीं ये वृंदावन में है, तुम्हें पता नहीं कि ये कौन से भक्त या कौन से महानुभाव होंगे जो इस प्रकार के रूप में आ रहे होंगे। और प्रभुपाद जी यहां तक कहते थे कि तुम्हारे बगल में जो बैठा हुआ है तुम्हें पता नहीं कि वो व्यक्ति कितना महान वैष्णव होगा। वो व्यक्ति हो सकता है कि अभी उसके अंदर कुछ बाहरी दुर्गुण दिख रहे होंगे, क्योंकि हमारी आंखों में इतने दुर्गुण हैं इसलिए दिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये जानता हूं तो मेरे साथ ही दीक्षा हुई है और मेरे जपा सर्कल में तो ये जानता हूं क्या होता है इनके साथ। तो देखिए कई बार हमें लगता है कि मैं जप में सोता नहीं इसलिए मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, और ये दूसरा व्यक्ति इसको मैं सोते हुए देखता हूं जप में, मतलब उसको जप भी नहीं कहेंगे, वो सोता ही है। परंतु यदि वो व्यक्ति यदि दो घंटे में यदि एक मंत्र भी उसने इस भावना से वो मंत्र जाप किया है, विलाप करते हुए कि मैं इतना अधम हूं कि मैं आपके जप में सोता हूं, यदि उसने एक महामंत्र भी उस भावना से लिया है तो वो एक महामंत्र हमारा जो घमंड से हमने पूरा सोलह माला किया उससे कई गुना ज्यादा शुद्ध एक मंत्र है। तो बाहरी रूप से कभी किसी वैष्णव को जज नहीं करना चाहिए कि वो वैष्णव कितना पढ़ा लिखा है, ये वैष्णव कितना अच्छा प्रवचन दे सकता है, ये वैष्णव कितना अच्छा गा सकता है, ये वैष्णव सोता है कि नहीं जप में या प्रवचन में, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं हम नहीं जानते कि भगवान उस वैष्णव को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, एक उन्होंने डेफिनेशन कृष्ण भावना भावित का दिया है कि कृष्ण भावनामृत संघ क्या है, कि हम इस पूरे संसार को भगवान के नजरों से देखें। इसका अर्थ है कि हम सभी वैष्णव को भी कैसे भगवान देखते हैं उस दृष्टि से हम देखें, यदि इस पूरे वैष्णव समुदाय को भी जिसके अंदर हम हैं तो कितना आदर होगा। और यदि ये वैष्णव संग करने के लिए नहीं है तो क्या है बाहर संग करने के लिए हमारे पास। तो यदि हम तुलना करें कि यदि मैं इस वैष्णव समुदाय में नहीं होता, इन वैष्णव के साथ नहीं होता, तो आज बाहर क्या कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं एक क्षण भी रह सकता हूं। इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष सब जगह पर हम देखते हैं कि जब हम वैष्णव के साथ बैठते हैं तो खुलकर हम अपना हृदय खोलकर बोल सकते हैं, परंतु जब जैसे कल का कार्यक्रम इतने बाहर के लोग आए थे तो कितना कुछ उनको समझाने के लिए करना पड़ता है कि हाँ भाई ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये प्रसाद, ये वैष्णव जब रहते हैं तो खिचड़ी में भी संतुष्ट है। अब मान लो ये सब ये जो पुष्याभिषेक के लिए सेवा की जा रही है, कल हम सबको बिठा देते पेपर लेकर, चलो निकालो। तो बाहर तो लोग सारा ये लेते हैं, हम मेरे ऊपर करो अभिषेक। तो जब हम वैष्णव के संग में रहते हैं तो कितना लाइट महसूस करते हैं, नहीं तो कल कितना प्रेशर था सबके ऊपर। सब इतना टेंशन में प्रेशर में घूम रहे थे यहां वहां। क्यों? क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों के साथ डील कर रहे थे जो पूर्ण प्रकार से वैष्णव नहीं बने हैं। परंतु जब वैष्णव के साथ रहते हैं तो सारा प्रेशर दूर हो जाता है, होता है कि नहीं, कि बढ़ जाता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी भी कोई वैष्णव को बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मेरे बगल में बैठा हुआ वैष्णव ये भगवान का नित्य पार्षद है। कि हो सकता है कि आध्यात्मिक जगत में ये कोई मंजरी हो या कोई गोप हो और भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण प्रकार से जानते हैं कि उसकी सेवा क्या थी आध्यात्मिक संसार में और इस भौतिक संसार में केवल कुछ समय बाकी रह गया है उस व्यक्ति का। जैसे स्कूल में कभी कभी देखा जाता है कि एक व्यक्ति है जो लोअर केजी से एक स्कूल में पढ़ते आ रहा है और एक दूसरा व्यक्ति दूसरे स्कूल से अब इस स्कूल में भर्ती हुआ है। तो ये व्यक्ति जो लोअर केजी से पढ़ते आ रहा है वो सोचेगा, अरे तुम अभी अभी आए हो, तुम्हें क्या पता, मैं बचपन से इसी स्कूल में हूं, मैंने 4-5 प्रिंसिपल देख लिए बदलते हुए और मेरे वजह से हो गए थे, तुम क्या जानते हो स्कूल के विषय में। तो वो व्यक्ति ऐसा सोच सकता है ये जो अभी अभी आया है, परंतु ये नहीं जानता कि ये व्यक्ति जो अभी अभी स्कूल में भर्ती हुआ है ये दूसरे स्कूल में कितना अच्छा विद्यार्थी रहा था और इसने कितनी अच्छी शिक्षा ली है उस स्कूल में। तो हम ये नहीं जानते, कभी कभी सोचते हैं कि अरे मैं ब्रह्मचारी हूं इसलिए बहुत, मैं इतने वर्षों से ब्रह्मचारी टिका हूं इसलिए मैं बहुत प्रगत भक्त होना चाहिए, या मेरी दीक्षा 15 साल पहले हुई और ये अभी अभी प्रेरणा से आया है प्रोग्राम में, कल के प्रेरणा से अभी आया है और एक माला शुरू नहीं की और मेरे बगल में बैठा है मेरे ही आसन पर। परंतु हम ये नहीं जानते कि जैसे उस व्यक्ति ने दूसरे स्कूल में पता नहीं कितना अच्छा उसने मार्क्स लेकर पास हुआ होगा, तो अभी अपने स्कूल में आया है परंतु उसका भी वही स्तर हो सकता है या हमसे ज्यादा अच्छा वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। और ये देखने भी मिलता है, कई बार देखने मिलता है कि व्यक्ति कुछ महीने हुए और तुरंत वो व्यक्ति इतना ज्यादा उत्साही, इतना ज्यादा दृढ़ अपने नियमों में वो बन जाता है। इसका कारण क्या है कि पहले से उसकी ट्रेनिंग हुई है कितने जन्मों से, और हो सकता है कि हमारी भक्ति केवल इसी जन्म में शुरू हुई हो और वो व्यक्ति बहुत जन्मों से भक्ति करते चला आ रहा है और अब हमारा संपर्क केवल इस जन्म में उस व्यक्ति से हुआ है। और ये भी हो सकता है जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीव ऊपर से आता है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बनता है, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारे बगल में बैठा है वो पहले ब्रह्मा जी हुए हों, पिछले जन्म में ब्रह्मा जी, केवल 3 सर अभी चले गए, 1 बाकी है। और यदि थोड़ा बहुत उन भक्त को याद आ जाए तो बाकी 3 सर फिर से भी आ सकते हैं। राधानाथ महाराज एक सुंदर उदाहरण दे रहे थे, उससे हम आज की क्लास संपन्न करेंगे कि जब हम भक्ति में साधना में लगते हैं तो माया एक तरफ है, हम एक तरफ, इतना ज्ञान तो हो जाता है, पहले हम उधर ही थे, माया के कैंप में थे, परंतु साधना भक्ति में जब लगते हैं तो पता लगता है अरे रे रे ओ वहां से यहां पर आना है, तो वो वहां का कैंप छोड़कर हम यहां पर आते हैं। और जैसे वो एक खेल है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं टग ऑफ वॉर, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, रस्सी खींच, रस्सी खींच खेला है किसी ने, सभी खेल रहे हैं हम लोग। साधना भक्ति वही है, एक तरफ माया है एक तरफ हम हैं, माया खींच रही है वहां से और हम भी खींच रहे हैं यहां से, और कई बार ऐसा होता है कि वो रस्सी खींच में एक तरफ का प्रभाव ज्यादा होता है तो इस तरफ ज्यादा खींच जाता है थोड़ा। तो कई बार हमारी साधना भक्ति में भी हमारी इंद्रियां जो हैं वो खींची चली जाती हैं, वो माया थोड़ा ज्यादा प्रभाव से खींचती हैं तो थोड़ा खींची चली जाती है, फिर याद आता है तो भागकर फिर से और थोड़ा जोर लगाते हैं। तो ये रस्सी खींच का जो खेल है ये हम भी कर रहे हैं साधना भक्ति में माया से। तो महाराज कह रहे थे कि हमारी साधना भक्ति में हम एक तरफ हैं और माया उस तरफ, और दोनों खींच रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं, परंतु हम फिर भी देखते हैं माया जो कि भगवान के समान शक्तिशाली है, हम फिर भी द्वंद्व कर सक रहे हैं, हम अपने आप को इस तरफ रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण पीछे से अपना एक उंगली लगाए हैं, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया था। तो हम ये नहीं जानते कि हमारे बल के वजह से नहीं हम माया से बच पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने एक उंगली लगाई है पीछे, इसलिए सब कुछ हो रहा है। हमको लगता है कि देखो मेरे 16 माला से चार नियम, इतने चाय नहीं पी मैंने, 10 साल हो गया, चाय सब अगल बगल में पीते रहते हैं मेरे ऑफिस में, लेकिन मैंने एक बूंद चाय इस गले के नीचे नहीं गई है जब से कंठी माला है। तो ये सारा जो बल हमारे अंदर आया है एक चाय छोड़ने का, या जब टीवी चालू होता है तो मैं एक बार देखता हूं, दूसरी बार नहीं देखता उसको, एक बार नजर जाती है लेकिन मैं खुद ऑन नहीं करता उसको, दूसरा कोई करता है। तो थोड़ा सुधार हुआ है, पहले मैं ही ऑन करता था। तो हमें लगता है कि हमारे बल के वजह से हम प्रगति कर रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि भगवान ने एक उंगली लगाई है पीछे रस्सी पर, जिसके वजह से हम अपने आप को बचा पा रहे हैं उस माया से। तब महाराज ने कहा इस खींचातानी में, इस साधना भक्ति में जब हम वैष्णवों का अपराध कर देते हैं तो क्या होता है, भगवान अपनी उंगली हटा लेते हैं, तब फिर क्या हाल होगा हमारा। और महाराज कहते हैं कि भगवान केवल उंगली नहीं हटाते, भगवान उधर चले जाते हैं, माया के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर सोचिए तब फिर हमारा क्या हाल होगा, हम एक तरफ, कृष्ण और माया दूसरी तरफ। तो इसीलिए हमें बहुत सावधानी से वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि यदि ये वैष्णव नहीं तो मैं वैष्णव नहीं रह सकता, इन वैष्णवों का संग यदि मुझे नहीं मिलेगा तो मैं वैष्णव नहीं रह सकता, और यदि मैं वैष्णव नहीं रहूंगा तब फिर जो यमदूत हैं वो अपना संग मुझे देंगे अवश्य ही। तो इसीलिए यहां पर श्रील व्यासदेव वो पांडव जैसे जो वैष्णव हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके दूत बने, सारथी बने, क्योंकि पांडवों का इस प्रकार का चरित्र था। नहीं तो भगवान को क्या आवश्यकता है कि अपना आध्यात्मिक संसार छोड़कर वो जाकर दुर्योधन जैसे व्यक्ति को जाकर समझाए कि दे दो इनको कोई राज्य। दूत बने वो पांडवों का, जाकर समझा रहे हैं, भगवान को क्या आवश्यकता है कि किसी का सारथी बने वो, क्योंकि अर्जुन और पांडव उनका चरित्र इस प्रकार का था। तो यही शिक्षा हमें कृष्ण लीला यदि हमें श्रवण करनी है तो व्यासदेव जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के जो अनन्य भक्त हैं पांडव जो हैं, उनका चरित्र हम अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
एक हिस्ट्री में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, एक इंसिडेंट याद आता है, तो
नहीं देखिए, हम इतिहास के किसी जो भौतिक इतिहास है इस संसार का, इसकी तुलना इस इतिहास से नहीं कर सकते जो कि अमल पुराण में जिसका उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये सब कुछ, ये लोग जो कुछ किए इन्होंने, वो सब अभी आगे चलकर दंड मिलेगा अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को दंड मिलने वाला है आगे। वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा कि भीम कह रहे हैं कि मारो, और यहां पर द्रौपदी कहती है कि क्षमा करो। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं अभी कि मैं क्या करूं, तो भगवान कहते हैं दोनों को प्रसन्न करो। तो आगे चलकर अश्वत्थामा को दंड भी मिलेगा। तो क्यों द्रौपदी, अर्जुन और सारे पांडव जो हैं, वो जो कुछ किए उन्होंने, चाहे दंड दिया या क्षमा किया, उसको सराहा गया है, क्योंकि उन्होंने भगवान के निर्देशन में किया। तो चाहे कोई भी चौहान हो, चाहे चतुर्वेदी हो, कोई भी हो, यदि भगवान के निर्देशन में नहीं है, शास्त्रों के निर्देशन में नहीं है, तो चाहे व्यक्ति उसको क्षमा भी कर रहा है तो उसका कोई तथ्य नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर इसके विषय में कहते थे कि बहुत बार हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में बहुत ऐसे कृपालु व्यक्ति को हम देखते हैं जो नैतिकता का पालन करते हैं, मोरालिटी बहुत अच्छी से पालन करेंगे नैतिकता का, और उनकी नैतिकता हो सकता है कि हमारे शास्त्रों की नैतिकता, जो तथाकथित बेसिक नैतिकता से ज्यादा शुद्ध देखी जाए, परंतु क्योंकि कृष्ण से संबंधित नहीं है इसलिए श्रम एव ही केवलम। तो भक्ति सिद्धांत सरे ठाकुर वो इसके विषय में एक उदाहरण देते थे। अंग्रेजी में वो कहते थे, इट इज लाइक किलिंग अ काउ टू डोनेट अ शू, कि किसी को दान में एक जूता देना है तो बहुत दानवीर व्यक्ति है कि मैं जूता दूंगा किसी को, परंतु उस जूते को दान करने के लिए वो गाय को मार रहा है ताकि उस गाय की चमड़ी से जूता बनाऊं और जूता बनने के बाद उसको दान में दो। या अंग्रेजी में उसे कहा गया है द एलिफेंट्स कंपैशन ऑन अ हेन, कि एक बार एक मुर्गी ने अंडा दिया तो मुर्गी के सारे जो पंख थे झड़ गए थे, तो अंडे को उसको हैच करती है मुर्गी, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, हाँ, तो मुर्गी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके सारे पंख जो है वो झड़ गए थे। तो हाथी आता है, हाथी कहता है मैं थोड़ी सहायता करूं, तो जो हाथी का कंपैशन है मुर्गी के प्रति उसको क्या कहेंगे आप? तो ये उसी प्रकार से जो नैतिकता लोग पालन करते हैं, यदि उसमें वो कृष्ण एलिमेंट नहीं है तो वो नैतिकता का कोई तथ्य नहीं। हाँ ठीक है, उनको वो भगवान की भक्ति के स्तर तक ला सकते हैं, यदि कोई सत्यवादी है, ये सब इसके अंदर ये सारे गुण हैं, तो भगवान की भक्ति तक वो लाने के लिए सक्षम है कि वो सत्व गुण में उस व्यक्ति को स्थित कर सकते हैं और सत्व गुण में व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पाएगा, अन्यथा नहीं। भगवान की जो भक्ति है वही वास्तविक नैतिकता है। जब आप कह रहे हो भक्ति, तो भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। तो भक्ति की परिभाषा है बिना किसी अन्य अभिलाषा के भगवान को प्रसन्न करने की जो चेष्टा है, उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर है, तब कह सकते हैं कि जो भौतिक नैतिकता है उसको पालन करने की आवश्यकता नहीं है उसे। परंतु यदि हम जब शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है तो हमारे लिए आवश्यक है कि ये नैतिकता का हम पालन करें। हाँ 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 तो जो बेसिक नैतिकता है, मोरालिटी है, उसका अवश्य हमें पालन करना है, क्योंकि उसका पालन करने की वजह से धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर आएंगे। परंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ गया, जैसे जड़ भरत, अभी जड़ भरत का उदाहरण यदि हम पढ़ें और कल जाकर हम जड़ भरत के जैसे जीवन जीना शुरू करें तो वो जो व्यवहार है वो जड़ भरत ने कब प्राप्त किया? भरत महाराज, फिर वो एक हिरण बने और हिरण के पश्चात सब सीख साख कर उसके बाद में। तो हमारी स्थिति में अभी यदि हमें इस समाज में प्रचार का ये जो कार्य है इसको जारी रखना है या अपनी साधना भक्ति को टिकाए रखना है तो हमें ये सब नियमों का पालन करना है, ये सोचते हुए कि इसे मैं भगवान की भक्ति में या सेवा में लगाना चाहता हूं। परंतु यदि वो तथाकथित नैतिकता हमें भगवान की भक्ति में, जैसे युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण भी है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने कहा अश्वत्थामा मर गया कहो, तो वो सोच रहे थे कि ये झूठ है, मैं कैसे कहूं। तो वो स्थिति हमारी नहीं होनी चाहिए कि यदि हम इस दुविधा में पड़ जाएं कि भगवान की शुद्ध भक्ति या मेरी नैतिकता, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में। तो उसे समझने के लिए उसे कहते हैं मैच्योरिटी, कि कहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना है नैतिकता से और कहां हमें शरण लेनी है शुद्ध भक्ति की, ये समझना चाहिए। उनके जो पुत्र थे उत्तम, उनके पुत्र मारे गए जिसके वजह से उसने अपराध किया था ध्रुव महाराज का, वही पुत्र मारा गया उत्तम। सुरुचि जब जीवित थी तो उसके सामने, उसकी जीवित अवस्था में उसके जो पुत्र थे उत्तम, वो जंगल में अग्नि में मर के, जल के मर गए, तो वो दंड मिला सुरुचि को उसका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की। अनाउंस करने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी नैतिकता से मैं कहता हूं, आज शाम को पुष्याभिषेक है जिसके लिए आप ये सब जो ये है पुष्प है वो निकाल रहे हो। कितने बजे होगा? 7 बजे। तो 7 बजे आप सब लोग जो आप सेवा कर रहे हो, और भी जो यहाँ पे नहीं आए हैं और जिनको पता नहीं उनको आप बता सकते हैं आज के इस फेस्टिवल के विषय में। हरे कृष्णा।